नमस्कार भारत, तारीख 4 जुलाई दिन सोमवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। भारत हो या पाकिस्तान, भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाकों में जरूरी सामान की किल्लत, पहाड़ों पर लोग फंसे,
जाने में परेशानी हो रही है, हर जगह पहाड़ गिरे हुए हैं, रास्ता साफ नहीं है, ठीक से बहुत प्रॉब्लम हो रही है,
रास्ते में साफ करने के लिए कोई सुविधा नहीं है।
बांग्लादेश ने ढाका हमले में इस्लामिक स्टेट का हाथ होने से किया इनकार।
सबाई किंतु बांग्लादेशी, सबाई बांग्लादेशी एवं एरा कोनो विदेशी नय एवं विदेशी संगे एदेर कनेक्शन आसे बोला।
जानेंगे क्या ढाका हमला भारत के लिए खतरे की घंटी है, होगा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी भी, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई हिस्सों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या 18 हो गई है, जबकि 18 अन्य लोग लापता हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बारिश की वजह से देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। उधर पाकिस्तान के चित्राल में बारिश के कारण कम से कम 31 लोगों के मारे जाने की खबर है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबॉर्न ने निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापार के मुनाफे पर टैक्स घटाने की योजना का खाका पेश किया है। वित्त मंत्री ने फाइनेंशियल टाइम्स अखबार से कहा कि वो कॉरपोरेट टैक्स को 20% से घटाकर 15% से कम पर लाना चाहते हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये कटौती कब लागू की जाएगी। बीबीसी के आर्थिक संवाददाता का कहना है कि ये यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले के बाद अनिश्चितता में घिरी कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने से जुड़ा कदम है। उधर लंदन की एक कानूनी फर्म का कहना है कि ब्रिटेन की सरकार को संसद की कार्रवाई के बिना यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करने से रोकने के लिए उसने कानूनी कदम उठाए हैं। जर्मनी के वित्त मंत्री वोल्फगांग शोइबले ने कहा है कि लोगों के बीच यूरोपीय संघ की अपील बढ़ाने के लिए इसके कामकाज में सुधार लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये बताने के लिए कि यूरोपीय संघ क्या है, नेताओं को कुछ खास करना होगा। हाल में ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में वोटरों ने यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में फैसला दिया है। शोइबले ने कहा कि ब्रिटेन के जनमत संग्रह के नतीजों को यूरोपीय संघ के नेताओं को खतरे की घंटी के तौर पर लेना चाहिए। उन्होंने कहा,
Wir dürfen uns ja nicht täuschen. Das, was in dem Referendum in Großbritannien zum Ausdruck gebracht worden ist, eine tiefe Skepsis vieler
Menschen. के जनमत संग्रह के नतीजे के बाद कई लोगों के मन में संशय है, इसे लेकर गलती न की जाए। ये यूरोप में हर जगह की स्थिति है, हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। हम जानते हैं कि यूरोप के हर देश में संशय बना हुआ है और इस वजह से हमें इसे चेतावनी के संकेत के तौर पर लेना होगा। ये थे जर्मनी के वित्त मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक की सरकार ने बगदाद में हुए धमाके को लेकर 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। कल हुए धमाके में कम से कम 125 लोगों की मौत हो गई और 150 अन्य लोग घायल हो गए। धमाके के वक्त लोग बाजार में खरीदारी कर रहे थे। इस्लामिक स्टेट ने धमाके की जिम्मेदारी ली है। बांग्लादेश पुलिस ने ढाका के एक कैफे में शुक्रवार को हमला करने वाले हमलावरों में से 5 के नाम जारी किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस के पास उनके बारे में पहले से जानकारी थी। इस हमले की जिम्मेदारी तथाकथित इस्लामिक स्टेट समूह ने ली थी, लेकिन सरकार ने उसके दावों को खारिज किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी की हिंदी सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं हूं अशोक कुमार। आज बात करते हैं सबसे पहले मौसम की। गर्मी और सूखे से बेहाल लोगों के लिए बारिश की बूंदें राहत बनकर आई, लेकिन कुछ जगहों पर भारी बारिश बड़ी तबाही की वजह बन रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में अतिवृष्टि से मरने वालों की तादाद 18 हो गई है, जबकि इतने ही लोग लापता हैं। खराब मौसम के चलते राज्य के विकास नगर में एक सड़क हादसे में 8 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में 72 घंटों की भारी बारिश के बाद अब राहत मिलने की कुछ उम्मीद है। उधर आपदा के हालात पर सियासत भी जारी है। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों में राहत का काम पिछले 2 दिन से लगातार जारी है। सेना के अलावा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां और पुलिस के जवान राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव शैलेश बगोली ने बताया,
इसमें एनडीआरएफ की 2 टीम कल हमारे पास गाजियाबाद से हमने डिमांड की थी, वो भी हमारे पास आ गई है। एक टीम में करीब 40 लोग होते हैं, इसमें एक टीम को हम लोग अल्मोड़ा में स्टेशन कर रहे हैं और एक टीम हमारी वो पिथौरागढ़ में जा रही है, सेम स्पॉट में, बस्तड़ी में ही, जहाँ इस तरह की घटना हुई है।
गंगोत्री और यमुनोत्री के रास्ते अब खुल गए हैं। गंगोत्री हाईवे उत्तरकाशी के पास अवरुद्ध था, लेकिन अब सड़क की मरम्मत कर दी गई है। इसी तरह केदारनाथ के रास्ते में भी मलबा साफ करने का काम जारी है। बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते पर भी भूस्खलन से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।
जगह जगह पहाड़ मतलब गिर रहे, तो मतलब तकलीफ हो रही है, ट्रैफिक मिल रहा है हम लोग को जगह जगह, तो मतलब जाने में परेशानी हो रही है। हर जगह पहाड़ गिरे हुए, रास्ता साफ नहीं है ठीक से, बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
रास्ते में साफ करने के लिए कोई सुविधा नहीं है।
इस बीच राज्य सरकार ने इस बात पर हैरानी जताई कि केंद्र सरकार अफसोस मनाकर चुप्पी साध गई है, जबकि इस बदहाली में उसे राज्य को आर्थिक मदद ऑफर करनी चाहिए थी। उत्तराखंड की संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश,
केंद्र सरकार को जो मदद करनी चाहिए वो नहीं कर रहा है। इमीडिएट तरीका क्या होता है, देश का प्रधानमंत्री तुरंत कहता है हम 500 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़ देते हैं, पैसा नहीं घोषित करते। इससे आपको खुद लगता है कि किस तरह मन में रिजर्वेशन रखे हुए, कैसे गैर भाजपाई सरकारें जिंदा रही।
हालांकि मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बात से इनकार कर चुके हैं कि पिछले कुछ रोज राज्य में भयावह रहे हैं। उनका दावा है कि सब कुछ सामान्य है, बारिश से परेशानी और अवरोध आए हैं वे कुछ जगहों पर दूर कर दिए गए हैं, कुछ जगहों पर कर दिए जाएंगे।
हमने बिजली, पानी और सड़क तीनों विभागों से कहा है कि उनकी सर्विसेज पूरी तरीके से रेस्टोर होनी चाहिए। अभी कहीं यात्रियों के फंसे रहने की सूचना नहीं है, जहां भी यात्री कुछ रुके थे उन तक हमारे पुलिस प्रशासन दल पहुंचा है। हमने हर सड़क के लिए यात्रा मजिस्ट्रेट, रोड मजिस्ट्रेट बना दिए हैं और उनको जिम्मेदारी सौंपी है कि वो यात्रियों के साथ संपर्क करेंगे।
भारी बारिश के पिछले कुछ दिन उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी गुजरे हैं। अब विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले कुछ रोज में हालात सामान्य हो जाएंगे। ऐसे में स्थानीय लोगों को संभलने का मौका मिलेगा, लेकिन प्रभावित इलाकों में अपने घर, खेत, मवेशी और परिजन गंवा चुके लोगों को अपनी टूटी हुई, बिखरी हुई जिंदगियों को संवारने में बहुत वक्त लगेगा। शिव जोशी, BBC, देहरादून।
उधर भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के कारण पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। करीब 15 दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर वाहनों की आवाजाही ठप पड़ी है, जिसके चलते प्रदेश में ईंधन और जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी है। ऐसे में त्रिपुरा की सरकार नदी मार्ग के जरिए बांग्लादेश से खाने पीने की सामग्रियां सहित आवश्यक वस्तु मंगाने की बात कह रही है। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा और सीमावर्ती असम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से खासकर त्रिपुरा का देश के अन्य हिस्सों से सड़क संपर्क कट गया है। ऐसे में इस मार्ग पर आम जरूरत की चीजें लेकर गुजरने वाले सैकड़ों ट्रक बीच में ही फंसे हुए हैं। ये स्थिति तकरीबन 2 हफ्तों से बनी हुई है। नतीजतन प्रदेश में खाने पीने के सामान से लेकर रसोई गैस और पेट्रोल की किल्लत होने लगी है। खबर है कि रसोई गैस की कालाबाजारी के साथ ही कुछ जगहों पर पेट्रोल 200 से 250 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। आम लोग परेशान है, अगरतला में रहने वाली गृहिणी सीमा देवनाथ ने BBC से कहा।
आलू जो कि पहले 20 kg पर किलो था, अभी ये 35 हो गया है और प्याज भी सेम है। आप दाल, मटर, जो चीज भी लो, हर एक चीज इतना ज्यादा बढ़ गया है।
राजधानी अगरतला में पेट्रोल लेने के लिए ग्राहकों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। पेट्रोल की किल्लत को देखते हुए त्रिपुरा सरकार ने रविवार से राशन व्यवस्था के तहत प्रत्येक ग्राहक को उसके वाहन के अनुसार सीमित पेट्रोल देने की व्यवस्था की है। त्रिपुरा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भानुलाल साहा कहते हैं,
ऑर्डरिंग 44
त्रिपुरा की सीमा से सटे असम के हिस्से वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत काफी खराब है। इस बीच इस मार्ग पर यातायात व्यवस्था ठप पड़ गई है और आगे भी अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में आवश्यकता के अनुसार खाद्य सामग्रियों का 2/3 स्टॉक रखा हुआ है। केवल पेट्रोल को लेकर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए राज्य सरकार ने आज से राशन व्यवस्था के आधार पर 2 पहिए वालों को 3 लीटर, 4 पहिए वालों को 8 लीटर और ऑटो रिक्शा को 5 लीटर पेट्रोल देने की व्यवस्था की है। ये थे त्रिपुरा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री भानुलाल साह के शब्द। दरअसल 630 किलोमीटर लंबा ये राष्ट्रीय राजमार्ग शिलोंग और गुवाहाटी के जरिए शेष भारत से त्रिपुरा को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है और इसका एक बड़ा हिस्सा असम में आता है। त्रिपुरा सरकार का ये आरोप है कि असम के हिस्से वाले क्षतिग्रस्त इस राजमार्ग की मरम्मत नहीं करवाने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। जबकि असम सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री परिमल शुक्लवेद खुद इस बात को स्वीकारते हैं।
ये बात तो सही है, क्योंकि असम का छोटा सा रास्ता का मरम्मत तो पहले 2-3 साल से नहीं हो रहा अच्छा ढंग से। ये तो यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो बन जाए, मगर अभी तो बरसात के लिए ऐसा हुआ कि काम सही ढंग से हो नहीं पा रहा, ये बात तो सही है।
त्रिपुरा सरकार अब इस संकट से निपटने के लिए पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से नदी के रास्ते ईंधन और खाद्यान्न सहित आवश्यक वस्तुएं लाने के प्रयास में जुटी है। वहीं क्षतिग्रस्त राजमार्ग की मरम्मत करवाने की बात कर रही असम सरकार को खराब मौसम के ठीक होने का इंतजार है। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
उधर पाकिस्तान के चित्राल इलाके में भी तेज बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और वहां कम से कम 31 लोग मारे गए हैं और कई लोग बेघर हो गए हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने पेशावर में BBC संवाददाता अजीजुल्ला खान से बात की।
तेज बारिश हुई और बारिश के बाद ये बाढ़ आई और उस वक्त लोग रात की नमाज पढ़ रहे थे, तरावीह अदा कर रहे थे और उसी दौरान बाढ़ आई। तो पहले तो एक मस्जिद में आई, वहां पर कोई 15 से 20 लोग नमाज अदा कर रहे थे कि इस दौरान उनमें से कोई 10 बंदे उस बाढ़ में बह गए और 5 जख्मी हुए, तो उनको निकाल लिया गया। इसके साथ ही वहां पर कुछ मकान थे, उन मकान को भी बहा कर ले गया। उसमें खवातीन भी थे, बच्चे भी थे और उसके अलावा मर्द भी थे जो जिनको ये बहा कर ले गया। जो इंतजामिया है वो अब कम से कम 31 अफराद के बारे में कह रही है कि वो लापता है, जिनमें से 8 से 10 अफराद के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी लाशें मिल गई है और बाकी का तलाश का काम जारी है।
अजीजुल्ला साहब, ये बताइए कि ये जो चित्राल वाला इलाका है, ये भारत की तरफ से देखें तो ये कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान के किस हिस्से में आता है ये?
ये बुनियादी तौर पे तो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का एक इंतहाई दूर दराज का इलाका है। पिशावर से अगर करें तो लगभग ये कोई 300 किलोमीटर दूर है, पहाड़ों पर वाकई है और इसकी सरहद इधर अफगानिस्तान से भी मिलती है, दूसरी जानब इसकी सरहद गिलगित बल्तिस्तान के साथ भी मिलती है और इसके अलावा यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं जिन पे सर्दियों में शदीद बर्फबारी होती है और फिर गर्मियों में वो ग्लेशियर्स बन जाते हैं तो वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, तो बारिशों के साथ अक्सर यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो ये जिस इलाके में आया है ये अरसूल का इलाका है जो चित्राल शहर से भी कोई 70 किलोमीटर दूर है, ये पाक अफगान सरहद के करीब है।
अजीजुल्ला साहब, ये बताइए कि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि चित्राल में जो बाढ़ आई वहाँ जो अफराद बह गए, लोग बह गए बाढ़ के पानी में, उनकी कुछ लाशें शव अफगानिस्तान में भी मिली हैं।
हाँ, दरियाए चित्राल जो है ये चित्राल की पहाड़ों से जब आता है तो ये अफगानिस्तान की जानब जाता है और फिर उधर से ये टर्न करके वापस चित्राल में आता है। तो इसमें एक इतला ये है कि इसमें जो ज्यादातर लाशें हैं इसी दरिया में बहकर अफगानिस्तान की जानब गई हैं, कुछ लाशें तो बिल्कुल ही बॉर्डर के ऊपर ही से मिली हैं, कुछ आगे गई हैं जिनकी वहां पर तलाश जारी है और उनको वहां से लाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। पिछले साल भी इसी इलाके में बाढ़ आई थी, इस मरतबा भी ये अलर्ट जारी किया जा चुका था कि जो मानसून का सीजन है ये ज्यादा बारिशों का इम्कान है, तो ये 2 घंटों की बारिश से जो बाढ़ आई है वो ये सब कुछ बहा कर ले गई।
ये थे पेशावर से अजीजुल्ला खान, जिनसे बात कर रहे थे हमारे साथी संदीप सोनी।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अभी अभी खबर मिल रही है कि सऊदी अरब के शहर जेद्दा में अमरीकी कौंसुलेट यानी वाणिज्य दूतावास के पास एक आत्मघाती हमला हुआ है। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि इस घटना में संदिग्ध हमलावर की मौत हो गई है, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जाते हैं। अमरीकी कौंसुलेट के पास ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब आज अमरीका अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खबर को लेकर जैसे जैसे जानकारी आती रहेगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए हमले को लेकर कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। बांग्लादेश की पुलिस ने 5 हमलावरों के नाम सार्वजनिक किए हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि उसके पास इन लोगों के बारे में पहले से कुछ सूचनाएं थीं। हालांकि बांग्लादेश के गृह मंत्री ने फिर इस बात से इनकार किया है कि हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ था। वो इसे स्थानीय प्रतिबंधित गुट जमीतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के चरमपंथियों का काम बता रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए हरिता कांडपाल से।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार को एक कैफे पर हुए चरमपंथी हमले के मामले में तफ्तीश जारी है। अधिकारी अब सोशल मीडिया के जरिए हमलावरों की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस खौफनाक हमले को अंजाम दिया। खबरों के मुताबिक शुक्रवार को कैफे में 20 लोगों की हत्या करने वाले 3 बंदूकधारियों की पहचान फेसबुक के माध्यम से ही हुई है। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान का कहना है कि सभी हमलावर बांग्लादेश के ही रहने वाले थे।
সবাই বাংলাদেশি এবং এরা কোনো বিদেশি নয় এবং বিদেশির সঙ্গে এদের কানেকশন।
কমান্ডো অপারেশন মে জো হামলাওয়ার মারে গয়ে ও সবই বাংলাদেশি থে, ও কোই বিদেশি নহি থে অর মুঝে নহি লাগতা কি কিসি বিদেশি মুলক সে উনকা কোই সম্বন্ধ থা। ও ইয়হি বাংলাদেশ মে পলে বড়ে থে और वो स्थानीय समूहों के इशारे पर काम कर रहे थे।
बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान के शब्द। बांग्लादेश में सुरक्षा मामलों के जानकार सेवानिवृत्त जनरल सखावत हुसैन का मानना है कि यदि इन हमलावरों का कोई संबंध तथाकथित इस्लामिक स्टेट से था तो ये बड़ी चिंता की बात है। इस्लामिक स्टेट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,
दिस टेरर आउटफिट व्हिच इज नाउ रीचिंग ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज।
ये चरमपंथी संगठन अब लगभग हर मुस्लिम देश और दूसरे देशों में भी पहुंच चुका है। ये न केवल एक तरह का वैचारिक चरमपंथ है, बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि ये बड़ा निर्दयी संगठन है जो बांग्लादेश जैसे समाज के लिए प्रतिबद्ध है।
सेवानिवृत्त जनरल सखावत हुसैन सरकार की इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखते कि कैफे पर हमला करने वालों का किसी विदेशी संगठन से कोई ताल्लुक नहीं था।
They deny that these are the homegrown terrorists and they have no connection with outside. They are doing it by itself.
वो मना करते हैं और कहते हैं कि ये बांग्लादेश में ही पले बढ़े थे और उनका किसी विदेशी संगठन से कोई संबंध नहीं था। उन्हें किसी राजनीतिक दल या किसी और का समर्थन हासिल था, लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीतिक राग अलापा जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को इसका एहसास होगा कि बांग्लादेश में कुछ वाकई बहुत गंभीर हो रहा है।
कहा जा रहा है कि ढाका के कैफे पर हमला करने वाले सभी हमलावर अच्छे घरों से संबंध रखते थे और सभी ने निजी स्कूलों और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। खास बात यह है कि इनमें से किसी ने भी मदरसे में पढ़ाई नहीं की थी। माना जाता है कि कई इस्लामिक चरमपंथी संगठन अपने सदस्यों की भर्ती इन्हीं मदरसों से करते हैं। सोशल मीडिया में कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट की लगाई कुछ तस्वीरों को देखकर कुछ लोग हमलावरों की पहचान अपने सहपाठी के तौर पर कर चुके हैं। बांग्लादेशियों का मानना है कि इस तरह के लोगों से निपटने के लिए इंतजाम करने में पुलिस ने बहुत देर कर दी है।
आपको रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। बांग्लादेश की सरकार ने फिर अपने यहाँ इस्लामिक स्टेट के अस्तित्व से किया है इनकार। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद। जुबैर साहब, ढाका का हमला हो, इस्तांबुल का हमला हो, काबुल में हुआ हमले की बात करें या फिर ताज़ा इराक का हमला जहां 125 लोग मारे गए हैं, पूरी की पूरी हफ्ते भर में आप कहिए हिंसा की एक नई लहर देखने को मिल रही है और सवाल फिर से उठ रहे हैं कट्टरपंथी इस्लाम को लेकर। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, इस पूरे जो रमज़ान का महीना है उसमें आपने जितने गिनाए उसमें फिर अमेरिका को भी अगर शामिल कर लें और लैंडो को, तो 6-7 ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिसमें चरमपंथी कट्टरपंथी इस्लामिक चरमपंथियों का हाथ बताया जा रहा है। ये इससे ये एक जाहिर होता है साफ कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा है वो कई देशों में बढ़ता जा रहा है, मुस्लिम समाज में भी ये पनप रहा है।
जितने ज़्यादातर हमले अभी हुए पीड़ितों में तो सबसे ज़्यादा
मुसलमान हैं
और सवाल भी उन्हीं
और यही पिछले 25 साल से होता आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो हमलावर हैं या जो हमले की प्लानिंग करते हैं, अगर आप 26/11 जो मुंबई पर हमला हुआ था उसमें भी आप देखें जो ऐसे विचारधारा वाले जो या तो भारत के दुश्मन हो या आसपास के देशों के दुश्मन हो या उसी देश में रह रहे हो और दुश्मनी दिखा रहे हो अपने समाज से या फिर बाहर से लोग जो आते हैं और इस्लामिक स्टेट के लोग ऐसा नहीं कि वो एक्सपोर्ट करते हैं कि भाई हम बांग्लादेश भेज रहे लोगों को तो चलो वहाँ हमला करते हैं, वो तो अपनी विचारधारा भेजते हैं और विचारधारा से जो प्रभावित होते हैं वही लोग हमले करते हैं, वो लोकल ही होते हैं।
जी, ढाका हमले जब से हुआ है, ढाका में हमला, बार बार बात उठ रही है कि भारत के लिए इससे नई सुरक्षा की चुनौतियां पैदा होंगी, इस डर को आप कितना वाजिब मानते हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि भारत में हमेशा से इसका खतरा रहा है, जब से इस्लामिक स्टेट पिछले 3-4 सालों से हमने इनके बारे में सुनना शुरू किया है, तब से ही हमने ये भी खबर सुनी है कि इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं जब भारत के युवा जो है मुस्लिम युवा वो बाहर
सोशल मीडिया के थ्रू
वो प्रभावित हो रहे हैं। पुणे में एक 16 साल की लड़की वो बगदाद जाके लड़ना चाह रही थी उनके साथ मिलके, और अभी पिछले हफ्ते हैदराबाद में कुछ गिरफ्तारी हुई है, NIA ने गिरफ्तारी की है। NIA का ये भी कहना है कि ये लोग भी जो है वो एक स्लीपर सेल थे इस्लामिक स्टेट के। तो उधर पाकिस्तान में भी काफ़ी संख्या में ये लोग मौजूद हैं, उनकी विचारधारा बड़ी स्ट्रांग होती जा रही। इधर बांग्लादेश में भी अभी कॉन्ट्रोवर्शियल है, कुछ लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं वहाँ की सरकार खासतौर से, लेकिन विचारधारा तो पहुँच चुकी है।
जी, कुल मिलाकर सोशल मीडिया का बड़ा रोल इसमें देखने को मिल रहा है,
इंटरनेट से, सोशल मीडिया से। तो दोनों तरफ जो मुस्लिम समाज है भारत के, वो दोनों तरफ से इस्लामिक स्टेट का दबाव है, भारत में भी इसका दबाव बढ़ता जा रहा है, और हमें इस बात की चुनौती है कि भारतीय मुसलमान और भारतीय सरकार कैसे इससे जूझे।
बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर अहमद इस विश्लेषण के लिए, और इसके बाद अब कार्यक्रम में बारी ये जान लेने की कि अखबारों में क्या कुछ छपा है। वात्सल्य राय हमारे साथ मौजूद है।
जी, अखबारों में भी अशोक जी, बांग्लादेश में जो ढाका में हमला हुआ है उससे जुड़ी खबरों को प्रमुखता से सारे अखबारों ने हिंदी और अंग्रेजी के अपनी जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी पहली खबर में बताया है, जो सरकार ने बांग्लादेश की कल कहा था कि हमलावरों के तार IS से नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ते हैं।
जी,
नवभारत टाइम्स की भी हेडिंग यही है। इसके साथ हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 कथित हमलावरों की तस्वीर भी छापी है, और बांग्लादेश सरकार के हवाले से अखबार लिखता है कि रेस्टोरेंट में हमला करने वाले लोग पढ़े लिखे थे, अच्छे परिवारों से उनका ताल्लुकात था।
जी,
द टाइम्स ऑफ इंडिया ने,
ये रुझान लगातार बढ़ रहा है।
जी जी, अपनी पहली खबर में बताया टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि हमलावरों में से एक का नाम था रोहन इम्तियाज, जो कि सत्ताधारी आवामी लीग पार्टी के एक नेता के बेटे हैं, और उनके पिता SM इम्तियाज ने 4 जनवरी को पुलिस में रिपोर्ट कराई थी कि उनके बेटे लापता हो चुके हैं।
जी,
इंडियन एक्सप्रेस ने भी इससे जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है, और एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी बांग्लादेश के, उनके हवाले से बताया है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पिछले महीने ही आगाह कर दिया था इस तरह के हमले को लेकर। अखबार ने एक और खबर में बताया है कि हमले में मारी गई भारतीय छात्रा तारीशी के एक दोस्त फराज ने अपनी जान इसलिए कुर्बान कर दी कि वो उनको अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहते थे।
जी,
अमर उजाला और जनसत्ता ने खबर दी है कि तारीशी का शव आज दिल्ली आएगा। स्टेट्समैन ने अपनी जो लीड खबर बनाई है वो इराक की राजधानी बगदाद में कल जो हमला हुआ था उसको बनाया है। द हिंदू ने भी इसको लीड खबर बनाई है।
एक्चुअली वो शनिवार की रात को हमला हुआ था।
जी, रात में 1 बजे हुआ था वो हमला, तारीख बदल गई थी। और इसके साथ इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी लीड खबर में बताया है कि जम्मू कश्मीर में जो एक के बाद एक चरमपंथी हमले बढ़े हैं उसको लेकर केंद्र सरकार को सुरक्षा एजेंसियों ने आगाह किया है कि राज्य सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, और इसमें आंकड़े भी दिए गए हैं कि चरमपंथ से जुड़ी जो घटनाएं हैं उनमें 47% का इजाफा हुआ है, पथराव की घटनाएं 51% बढ़ी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स और इसके साथ अमर उजाला ने एक खबर दी है कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में कल विस्तार संभव है।
काफ़ी दिनों से अटकलें लगाई जा रही
हैं। एक खबर मैं आपको जाते जाते और बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ने अपनी लीड खबर में जानकारी दी है कि यूपी बिहार में अभी हज़ारों बच्चे तैर कर स्कूल पढ़ने जाते हैं।
जी, इस पर ध्यान देना होगा सरकार को, और ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए, और अब हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
कार्यक्रम की शुरुआत विंबलडन से। इस बार विंबलडन में पहले ही दिन चार ऐसे खिलाड़ी बाहर हुए जो टूर्नामेंट जीतने में भले ही सक्षम ना रहे हों, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो तीसरे या चौथे दौर तक भी ना पहुंच सके। इनमें फ्रांस के गेल बॉनफिल्स, दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन, जर्मनी के फिल कोलश्राइबर और उरुग्वे के पाब्लो कुएवास शामिल थे। और जब बीते शनिवार को शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच भी बाहर हो गए, तो इस सिलसिले ने आश्चर्य का रूप ले लिया।
Says himself for the forehand, the off forehand, backhand from Querrey. It's gone wide and he's done it. Would you believe it? Sam Querrey leaps for joy. He has put out the world number one, the defending champion. This is a result of seismic proportions here at Wimbledon 2016. Novak Djokovic, unbeaten in 30 Grand Slam matches, has been beaten here.
जोकोविच को अमेरिका की 28वीं वरीयता हासिल सैम क्वेरी ने 7-6, 6-1, 3-6, 7-6 से हराया, जबकि इससे पहले चौथी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के स्टीन वावरिंका भी अमेरिका के युआन मार्टिन डेलपोत्रो से 3-6, 6-3, 7-6, 6-3 से हारकर बाहर हो चुके थे। अब बारी थोड़े उलटफेर की महिला वर्ग में थी, जब कल छठी वरीयता हासिल इटली की रॉबर्टा विंसी 27वीं वरीयता हासिल अमेरिका की कोको वांडेवेगे से 6-3, 6-4 से और 11वीं वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड की टिमिया बेकनी सिनेस्की, 21वीं वरीयता हासिल रूस की अनस्तासिया पावल्यू चेनकुआ से 6-3, 6-2 से हार गई। लेकिन शीर्ष वरीयता हासिल अमरीका की सेरेना विलियम्स जर्मनी की एनिका बेक को 6-3, 6-0 से और रूस की स्वेतलाना कुजनेत्सोवा ने अमरीका की स्लोने स्टीफंस को 6-7, 6-2, 8-6 से मात दी। महिला युगल वर्ग में पिछली चैंपियन जोड़ी शीर्ष वरीयता हासिल भारत की सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने जीत के साथ शुरुआत करते हुए जापानी जोड़ी इरी होजुमी और मियू कातो को 6-3, 6-1 से मात दी। और अब बात हॉकी की। पिछले दिनों चैंपियंस ट्रॉफी में रजत पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम ने कल अपना अंतिम मैच मेजबान स्पेन से 1-1 से बराबरी पर समाप्त किया। इससे पहले भारत ने अर्जेंटीना को भी 3-3 से बराबरी पर रोका था, जबकि वो जर्मनी से 4-0 और न्यूजीलैंड से 1-0 से हारा। भारत ने एकमात्र जीत आयरलैंड के खिलाफ हासिल की और उसे 2-1 से हराया। भारत के खेल में जीत के प्रति निरंतरता की कमी से निराश हैं पूर्व ओलंपियन हरविंदर सिंह।
कहीं ना कहीं ये जो चैंपियन ट्रॉफी की जो परफॉर्मेंस, उससे इसमें जो परफॉर्मेंस हमारी डाउन गई है, तो ये शो करता है कि हमारी टीम में कंसिस्टेंसी की कमी है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो टीम है अपनी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी लाए। और ये नहीं है कि अगर आप एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो टॉप पे चले जाते हो, दूसरे टूर्नामेंट में जो हमारा जो एक ग्राफ है काफी नीचे आ जाता है।
उधर इंग्लैंड ने कार्डिफ में खेले गए 5वें और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 122 रनों से करारी मात दी और इसके साथ ही सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। आखिरी एक दिवसीय मुकाबले में श्रीलंका के सामने जीत के लिए 325 रनों का विशाल लक्ष्य था, जिसका पीछा करते हुए उसकी पूरी टीम 42.4 ओवर में ही 202 रनों पर सिमट गई।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और अब बारी मुख्य समाचारों की।
बीबीसी समाचार। सऊदी अरब के जेद्दा की स्थानीय मीडिया के मुताबिक अमरीकी कंसुलेट के पास हुए धमाके में एक आत्मघाती हमलावर के मारे जाने की खबर है। हमले में 2 पुलिस वालों के भी घायल होने की खबर है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबर्न ने निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापार के मुनाफे पर टैक्स घटाने की योजना का खाका पेश किया है। जर्मनी के वित्त मंत्री वोल्फगांग शोइबले ने कहा है कि लोगों के बीच यूरोपीय संघ की अपील बढ़ाने के लिए इसके कामकाज में सुधार लाने की ज़रूरत है। इराक की सरकार ने बगदाद में हुए धमाके को लेकर 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। बांग्लादेश पुलिस ने ढाका के एक कैफे पर शुक्रवार को हमला करने वाले हमलावरों में से 5 के नाम जारी किए हैं। फ्रांस ने आइसलैंड को 5-2 के अंतर से हराकर यूरो कप 2016 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पेरिस में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हाफ टाइम तक फ्रांस की टीम 4-0 से बढ़त बनाई हुई थी। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार भारत में अब समय आ गया है कि आपसे विदा ली जाए। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। आपसे अगली मुलाकात हो रही है ठीक एक घंटे बाद कार्यक्रम विश्व भारती में। आपको सुनवाएंगे पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान की डायरी और साथ ही कांग्रेस ने दी इफ्तार पार्टी। जरूर सुनिएगा। फिलहाल नमस्कार।